सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार।
ओम शांति। जो गुड मैनर्स में जो अपनी श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम देखेंगे कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें। तो इसमें हमने दो एंगल्स लिया है, एक बड़ों के यानी छोटों ने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करे और बड़ों ने भी छोटे के साथ कैसा व्यवहार करे, क्योंकि दोनों का बैलेंस चाहिए ना, नहीं तो फिर छोटे के ऊपर क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। इसलिए दोनों एंगल से हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि बड़े किसको कहा जाता है, कि जिसका वेट बहुत है यानी हाइट है उसको, अच्छी पर्सनालिटी है या आगे पेट है उसको बड़ा कहेंगे, किसको? हाँ, पद पोजीशन बड़ा है उसको। हाँ, जो गुणवान है उसके अंदर गुणों की धारणा है उसे हम बड़े कहेंगे। जी जी, हाँ, चरित्रवान, जिसके चरित्र श्रेष्ठ है, चरित्रवान है उसको हम बड़े कहेंगे। हाँ, चारों सब्जेक्ट में वो परफेक्ट है उसको भी हम बड़े कहेंगे। हाँ, वो भी ठीक है, मगर उसका अनुभव अनुसार वो बड़ा है। हाँ जी, हाँ ये जिसे तो बड़े है ये है उसको तो बड़े कहेंगे, क्योंकि वो को अनुभव रहता है ना, उतने साल से वो डिपार्टमेंट है, कुछ संभाल रहे, बाबा ने उसको निमित्त बनाया है, तो वो तो एज के अनुसार है ही बड़े। हाँ हाँ, बाबा ने बोला है ना, जो अनुभव की अथॉरिटी है जिनके पास, तो अथॉरिटी से भी अपन उसको बड़े कह सकते हैं। जो इंचार्ज है बहुत साल से डिपार्टमेंट संभाल रही है, बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, उसको ही बड़े कह सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे आज देखा जाए तो दुनिया में हर क्षेत्र में, जैसे राजकीय क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, ये संसार के क्षेत्र हो गए, उनके साथ साथ हमारे ब्राह्मण परिवार में भी, ब्राह्मण क्षेत्र में भी हर एक ही चाहता है कि हमें स्नेह मिले, प्यार मिले और हाँ हमारा रिगार्ड रखे, कोई सम्मान मिले, ये तो हर एक चाहती है। और यदि मिल गया तो दिल से सभी को खुशी होती है और दोनों के संबंध में क्या होता है, मजबूती आ जाती है। जैसे पिता पुत्र का संबंध है, पिता का क्या ये रहता है कि पुत्र से हमें सम्मान मिले और पुत्र का भी पिता के प्रति क्या रहता है, उनसे हमें मान मिले यानी स्नेह मिले, प्यार मिले, ये हरेक का ही रहता है। जैसा माता और बेटा का या बेटी का वही एंगल रहता है कि उन हमें कुछ मिले। जैसा गुरु और शिष्य है, गुरु की यही भावना रहती है कि शिष्य से हमें सम्मान मिले और शिष्य को भी क्या रहता है, गुरु से हमें स्नेह प्यार मिले। तो इस प्रकार ये हरेक को स्नेह प्यार मिले तो खुश हो जाती है। तो जैसे किसी संत ने कहा है कि यदि जिस परिवार में समझो देश में या समाज में यदि भाई भाई में आपसी स्नेह प्यार है और बड़े को रिगार्ड देते हैं, उस परिवार में क्या ईश्वर का वास होता है, यानी भगवान वो ये करता है, अस्तित्व रहता है और उस परिवार में या देश में सुख शांति से भरपूर रहता है। और यदि जिस देश में समझा परिवार में यदि प्यार स्नेह नहीं रहा और एक अपने लोग अपने को ही नीचे गिराने का औरों द्वारा प्रयत्न करते प्रयास करता है तो उसका क्या होता है, पतन हो जाता है, चाहे वो परिवार रहे या देश रहे। तो जैसे देश के बारे में कहा सकेंगे अपन, जैसा अपना भारत देश है कि भारत का ही यानी द्वापर युग से देखा जाए तो भारत का जो पतन हुआ उसका किसके कारण, अपने रोगों द्वारा हुआ। जैसे उस समय के राजा थे जो शक्तिशाली राजा थे, लेकिन शक्तिशाली होते हुए भी उनका पतन हुआ, इसका कारण क्या था, अपनों द्वारा ही यानी जो अपने लोग विरोधी लोगों को मिले और उसके कारण उसका पतन हुआ। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बताती है कि महाराणा प्रताप उस समय बहुत तो शक्तिशाली राजा नहीं था, साधारण था, मगर उनके विरुद्ध जो राजा था वो अकबर था। तो अकबर बहुत शक्तिशाली था, उनके साथ बहुत सारे सैन्य बल थे, धन संपदा थी, उसके तुलना में देखा जाए तो महाराणा प्रताप थोड़े कमी थे, मगर उनका क्या था, आपस में परिवार में मिलजुल था, एकजुट थी, उसके कारण वो अकबर उन पर हरा नहीं सका उसको। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसके परिवार में जब मतभेद हो गए और उसके लोग वो अकबर को मिल गए तो उसी कारण क्या हो गया, उसका पतन हो गया। दूसरी बात जैसे महाराष्ट्र में देखा जाए तो शिवाजी महाराज और उसका विरोधी राजा कौन था, औरंगजेब। तो औरंगजेब भी उस समय शक्तिशाली था, मगर शिवाजी महाराज में यूनिट थी, उसके जो परिवार के लोग थे वो मिलजुल के थे और बाकी उसके जो सेवा सहयोगी थे वो भी उसको सहयोग देते थे। तो उसके कारण वो औरंगजेब उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। लेकिन शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था संभाजी राजे वो राजा बना, तो वो भी शक्तिशाली था, वो भी श्रेष्ठ यानी योद्धा था, यानी वो कम नहीं था, शिवाजी महाराज से थोड़ा श्रेष्ठ ही था, मगर उसके पारिवारिक आपस में क्या मतभेद हो गई। मतभेद होने के कारण वो औरंगजेब ने उसको पकड़ा गया और बेरहमी से उसकी हत्या की दी। तो ये अपने लोगों के कारण ऐसा हुआ। तीसरा एक इतिहास में बात आती है अपने भारत देश की, क्योंकि भारत का जो पतन हुआ यानी ब्रिटिश ने 150 साल तक भारत पर शासन किया, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि ऐसी कहती है कि ब्रिटेन है भारत से तो बहुत दूर है, क्योंकि सात समुद्र से दूर है बोलते, पर उतनी दूर से आकर भी भारत पर उन्हें 150 साल तक शासन किया, तो इसका कारण क्या है, अपने लोगों ने उनको मदद की और उनके सहयोग से भारत देश को 150 साल तक उसके आधिपत्य में रहना पड़ा, तो ये गुलामी में रहना पड़ा। तो ये हो गई यानी अपने लोगों के कारण यानी दूसरे को विरोधी पक्ष को सहयोग देने के कारण क्या हुआ, अपना पतन हो गया। तो ऐसा ही कोई भी अपनी संस्था चलाने किसी को समझो, या अपना मधुबन में कोई डिपार्टमेंट चलाना है या सेंटर पर भी चलाते तो उसमें सब मिलजुल के रहे तो सेंटर पर भी या मधुबन में भी क्या हो जाएंगे, वो सेवा क्षेत्र में प्रगति कर सकेंगे और उनमें आपस में उन्नति हो सकती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, यानी मिलजुल कर चलना चाहिए, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्यार चाहिए, छोटों को स्नेह प्यार मिलना चाहिए बड़ों से और बड़ों को भी छोटे से यानी रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है, यानी आपस में संबंध अच्छा रहता है और वो अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो ऐसे हमने कुछ एक पॉइंट निकाले हैं। तो पहले अपन देखेंगे कि बड़ों के साथ यानी कैसा व्यवहार करे छोटों ने, तो उसे कुछ पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है वो स्वीकार करना है, यानी बड़ों ने जो यानी छोटे ने जो बड़े है जो इंचार्ज है समझो, जैसे मधुबन में समझो क्या कोई सेंटर पर जब भी बाबा ने निमित्त बहन को या भाई को बनाया है तो उसको क्या समझना है कि स्वीकार करना है कि ये हमसे बड़े है बा हम छोटे, जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, या एक सिंहासन पर जो राजा है बैठ नहीं सकते, और एक सेंटर पर भी समझो यदि दो इंचार्ज रहे तो कारोबार ठीक से चल नहीं सकता, चलेंगे क्या, क्योंकि दो लोग है तो वो अपना मत देंगे और दूसरा अपना देंगे तो वो चलेगा नहीं ना, इसलिए हाँ जिम्मेवारी संभाल नहीं पाएंगे। तो जिम्मेवारी के लिए एक को तो निमित्त बनाना पड़ेगा ना, तो वैसा एक को हमें रिगार्ड देना ही पड़ेगा कि सम्मान देना पड़ेगा, ये हमसे बड़े है हम छोटे है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ा है उससे भी छोटा यानी ज्यादा विशिष्टता पूर्ण रहता है, यानी वो समझे लौकिक पढ़ाई में भी उससे ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है, या अथवा उसके अंदर बहुत गुण विशेषता रहते, ज्ञान योग में वो बहुत आगे रहता है, या भाषण करने में वो अच्छा भाषण कर सकता है। तो इसके कारण यानी उसने ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत कुछ विशेषता है बड़े से, लेकिन बड़े राष्ट्र में बड़े ही रहते हैं क्योंकि उनको इतने साल से अनुभव रहता है, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी रहती है ना, क्योंकि वो डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, अनुभव रहते। बाबा ने बोला है ना कि जो भी अनुभव की अनुभव मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी श्रेष्ठ अथॉरिटी है, तो अनुभव की अथॉरिटी से भी उनको सम्मान देना चाहिए। जैसे अपने यज्ञ में जो भी वरिष्ठ भाई लोग है, या मम्मा बाबा का वो एग्जाम्पल लो, क्योंकि मम्मा भी बाबा को बहुत सम्मान देती थी, क्योंकि जो भी ब्रह्मा बाबा उनको सेवा बताते थे तो वो रिगार्ड रिस्पेक्ट के साथ वो सेवा करते थे। ऐसे एक यज्ञ में एक मिसाल आया कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक बार एक पार्टी को बाबा ने विदाई किया, वो जा रहे थे तो निकल चुके थे वो जाने के लिए, और जाने के लिए निकल चुकने के बाद बाबा ने एक बहन को बताया कि मम्मा को बोलो कि हलवा बनाकर ये इनको पार्टी वाले को देना है, ये जा रहे उनको। तो फिर वो बहन का संकल्प चला, अभी ये लोग तो जा रहे हैं अभी, और जाते समय अभी मम्मा कब हलवा बनाएंगे और उसको कब देंगी, पहले उनका संकल्प चला। लेकिन बाबा ने कहा है तो वो मम्मा के पास तो बहन गई और मम्मा को उसने बोला कि बाबा ने आपको हलवा बनाने के लिए बोला है और वो पार्टी तो निकल चुकी, तो वो तो उतने समय में आपका बनेगा नहीं। लेकिन मम्मा ने क्या बोला, नहीं बाबा ने कहा है तो मुझे बनाना है, तो उसने बाबा का श्रीमत अनुसार वो बनाना चालू कर दिया, तो हलवा बन गया। बाद में एक डब्बे में प्याक करके बाबा के हाथ में दे दिया, फिर बाबा ने एक भाई को दिया और वो भाई लेकर वो हलवा वो पार्टी को देने के लेके, तब तक वो लोग कहा आबू रोड पहुंच गए थे, ट्रेन में ही बैठ गए थे, मगर जैसे ही उनके हाथ में हलवा मिला बाद में ट्रेन छूट गई। यानी देखो मम्मा का कितनी भावना थी कि बाबा ने जो भी दिया उसको श्रीमत उसी अनुसार उसने उसका सम्मान किया। वैसे हमें भी क्या करना है, और छोटे ने बड़े का सम्मान करना है, तो सम्मान के साथ ये करना है। एक बाबा की श्रीमत यानी मम्मा ने मानी, नहीं तो वो भी बोलती कि अभी वो लोग गेट के बाहर चले गए, अभी हलवा कब बनेगा, तब तक तो वो पहुंच जाएंगे, उसको मिलेगा नहीं। लेकिन वो यज्ञ के समय ट्रेन का सुना है, क्योंकि वो आबू रोड तक वो भाई ने पहुंचा दिया था, बोलते ऐसा उसमें पता नहीं, हो सकता है बस में हो सकता है, बस में भी हो सकता है, मगर उसको दे दिया उन्होंने। दूसरी बात है रिगार्ड, यानी हमें रिगार्ड देना है कि बड़े को छोटे ने, क्योंकि बाबा ही कहते हैं ना अपन जिनको जो देंगे वो रिटर्न में हमें मिलेगा, क्योंकि रिगार्ड देंगे तो हमें रिगार्ड मिलेगा। तो जैसा भक्ति मार्ग में बताते हैं ना, जिनके पास जिस चीज की कमी रहती है वो उसका दान करो, तो दान करने में क्या होता है, वो कहीं अपन को मिल जाता है। यदि धन दान करेंगे तो ऐसे धन के बारे में बताते हैं कि एक जन्म में यदि अपन धन दान करेंगे तो 3 जन्म तक वो अपन को रिटर्न मिलता रहेंगे, यानी धन की कमी नहीं रहेगी। जी खुद तो धन रहेगा तो देंगे ना वो, तो उसका ही वो भक्ति मार्ग में बताया ना कि एक जन्म यदि धन अपन दान करेंगे 3 जन्म तक मिलता है, तो पहले जन्म में वो दान करेंगे तो पहले जन्म में दान किया होगा इसलिए दूसरे जन्म में उनके पास बहुत कुछ धन रहेगा बोलते, और धन रहेगा तो दान करेंगा वो, और उसके लिए भावना ही चाहिए। तो कई कई लोग के पास तो धन होते हुए भी वो धन दान नहीं करते, कंजूस बना करते, तो वो बोलते वैसे नहीं होना चाहिए। तो वो धन देंगे तो अगले जन्म में उसको धनवान परिवार में जन्म मिलेगा, तो जो देंगे अपन वो मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बाप बोलती थी, एक जन्म अपन किसको रिगार्ड देंगे तो अपन को रिगार्ड कितने जन्म मिलेगा, एक के जन्म तक हमें रिगार्ड मिलता रहेगा, इसलिए देते रहो। अभी जे भी अपने यज्ञ में समझो दूसरे को रिगार्ड देते हैं तो वो रिगार्ड मिलता है ना, यदि अपन को किसका मान सम्मान करेंगे तो रिटर्न में वो भी अपना मान सम्मान करते हैं, तो रिगार्ड देना है। और तीसरी बात है सहन भी करना है हमें। कभी कभी क्या होता है, बड़ों द्वारा बड़ों और छोटे के संस्कार में टकराव हो जाता है, या बड़े छोटे का कुछ यानी उसको रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं रखते, कुछ भी बोल देते समझो, या यदि एक आदमी गलती हो गई छोटे से तो बार बार उसको टार्चर करेंगे आपकी गलती हो गई, वो 10 लोगों को बताएंगे इनके द्वारा इतनी इतनी गलती हो गई, तो फिर उसको क्या होता है, फील होता है कि मेरे से थोड़ी गलती हो गई, तो इतने लोग को ये सुना रही है, तो उसमें आपस में क्या होता है, प्यार संबंध में थोड़ा कड़वापन आ जाते हैं उनके अंदर भी। तो बाबा ने कहा है कि सहनशील बनना है तो अभी सहन करना पड़ेगा, अब उनको सहन करेंगे तो हम सहनशील बनेंगे। तो जी तो हमें सहन करना है। अब यज्ञ में देखो ये भी वरिष्ठ भाई लोग आज जिस पद पोजिशन पर है, तो उनका अनुभव में यही सुना थे वो लोग को, उन्होंने बहुत कुछ सहन किया ना, सहन किया तभी तो वो पद पोजिशन उसको मिल गया है। तो यज्ञ में जब बेगरी पाठ था उस समय भी बाबा ने जो दादिया को था, दादिया को यानी सेवा निमित्त बाहर भेज दिया था, तो उन्होंने भी सेवा करते समय कितना सहन करना पड़ा उसको, कितनी विघ्न है बाहर के लोगों द्वारा, तो भी उसने सहन किया। जैसे हापुड़ का हंगामा है उसमें उन लोगों ने, ये अपना ज्ञान भी नया नया था, उन लोगों के समझ भी नहीं आ रहा था, तो बहुत कुछ उन लोगों ने विरोध किया और अपने भाई लोगों ने उतना यानी सहन किया। तो बाहर का भी सहन, अंदर अंदर का भी सहन तो करना पड़ा, बाहर का कर सकते क्योंकि वो बाहर के लोग रहते हैं, लेकिन अंदर के अपने द्वारा जब भी अपमान होता है तो वो ज्यादा ही फील होता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि अपने द्वारा जो होता है उसको सहन करो, तब अपन सहनशील बनेंगे। तो छोटों ने क्या करना है, बड़ों से जो भी कभी होता ही है अपमान तो भी सहन करना है। और चौथी बात है यानी ड्रामा पर नीचे रखना है। कभी कभी को संस्कार टकराव के कारण ज्यादा ही टॉर्चर करती है तो छोटे को बहुत फील हो जाता है, कभी कभी इतनी समस्या आ जाती है कि वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट चेंज करने का उनके अंदर भावना आ जाती है, या चलो भाई ये बार बार अपन हर दिन बोलती है फिर वो झगड़ा होता है तो क्या करे, तो डिपार्टमेंट चेंज कर देना बा दूसरा। तो कभी कभी डिपार्टमेंट भी चेंज कर देती है, मगर डिपार्टमेंट चेंज करने की वजह से दूसरे में सेवा करते हैं तो वही पर भी कभी कभी क्या होते, वैसे स्वभाव संस्कार वाले लोग उनको मिल जाते हैं तो फिर भी टकराव हो जाता है, तो फिर वो इतने डिस्टर्ब होते फिर क्या करे। तो फिर उस वो एकदम तो फिर वो तो फिर वो हिम्मतहीन हो जाते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं वो, क्योंकि क्या करे। तो उस समय क्या करते हैं वो, बाबा का हाथ भी छोड़ देते हैं, कभी कभी ऐसी मुसीबत आती है कि बाबा का हाथ छोड़ देते, उससे क्या हो जाएगा, उसका जन्म जन्म का घाटा हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि भगवान का जब हाथ छोड़ गया, छोड़ दिया उन्होंने, तो कमाई भी चट हो गई उनकी। तो इस समय के ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपन को समझ देना चाहिए कि जो व्यक्ति है, समझो जिस व्यक्ति द्वारा या परिस्थिति द्वारा उसको समस्या आती है या वो डिस्टर्ब होता है तो ड्रामा पर छोड़ देना चाहिए, कि ड्रामा अनुसार जो हो रहा है, एक अंधा व्यक्ति समझो किसी को दुख दे रहा है तो उसके द्वारा दुख मिल रहा है, तो ये समझ कि पहले जन्म में मैंने कुछ उसको दुख दिया होगा इसलिए अभी वो रिटर्न में मेरे को मिल रहा है, मेरे भी कर्म का जो हिसाब किताब है वो रिटर्न में मुझे मिल रहा है। इस भावना से आप समझाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अपना नुकसान नहीं हो जाएगा ना उसमें, तो ये करना है। या ड्रामा में हर एक आत्मा का जो भी पार्ट है वो तो अपना प्ले करेंगे, उसमें स्वयं भगवान भी नहीं बदली कर सकता है ना, तो फिर वो आत्मा को तो अपन बदल नहीं सकते, इसलिए स्वयं कहीं बदलो। तो इस पर एक रामायण में ऐसा आता है, मुझे बताते हैं जैसे रावण के बारे में बताते, क्योंकि रावण को बाबा ने आज ही याद किया, जैसे रावण के 10 शिष्य दिखा थे बोलते, तो 5 स्त्री का और 5 पुरुष के विकार, जिसके वो 10 शिष्य दिखाते उसको। तो रावण के बारे में बताते कि रावण कौन था, विद्वान पंडित था, वो भी ज्ञानी था बोलते, और वो भी कौन से ब्राह्मण वंश का था, कोई साधारण नहीं था, वो भी शक्तिशाली था, लेकिन उसमें इतना सब कुछ होते हुए भी क्या अहंकार था, अहंकार के कारण वो किसी की भी बात समझ नहीं सकता था। तो एक बार बोलते उन्होंने सीता का हरण किया, सीता माता का हरण करके लंका में ले गया, लंका में ले जाने के बाद सबसे पहले मंदोदरी उनकी जो पत्नी थी उसने उसको समझाया कि माता सीता एक आदि शक्ति है, उसको आपने नहीं लाना चाहिए, इसलिए यदि उसको लाए तो अपने लंका का सर्वविनाश हो जाएगा, इसलिए वापिस कर दो और आप प्रभु रामचंद्र के शरण में चले जाओ। परंतु उस समय उसने उसकी बात नहीं सुनी, बाद में उसका भाई विभीषण उसने उसको वो समझाया, फिर उसने उसकी बात नहीं सुनी, विभीषण की भी नहीं सुनी, और बाद में इंद्रजीत वो भी उसको भी युद्ध में भेजा गया, नहीं उसके पहले यानी कुंभकर्ण को भेजा गया था। तो कुंभकर्ण तो 6 मास तो सोचता रहता था और बाद में जगता था, उसको जगाया गया। फिर उसने कारण पूछा कि मेरे को क्यों जगाया, तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा रावण ने किया है जिसलिए युद्ध चालू हो गया है, तो आपको युद्ध में जाना है। तो उसने उस समय उसको समझाया रावण को कि प्रभु रामचंद्र भगवान का अवतार है, उसके साथ आप युद्ध नहीं करो, यानी उसकी सीता उसको वापस कर दो। लेकिन उसकी बात नहीं मानी उसने, तो सेवटी वो कुंभकर्ण का भी विनाश हुआ। और बाद में इंद्रजीत थे उसको ही भेजा उन्होंने, तो उसने भी एक बार जा करके विजय प्राप्त करके आया, मगर उनको और राम जी का क्या हुआ, शक्ति का एहसास हुआ कि वो शक्तिशाली है। तो फिर उसने बोला कि राम साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक भगवान का अवतार है, तो इसलिए उसकी सीता उसको वापस कर दो, आप शरण में चले जाओ तो अपनी लंका बच सकती है। लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी, तो और लास्ट में वो भी चला गया और उसका ही विनाश हो गया, लंका का सर्व विनाश हो गया। तो यहाँ पर ये तो कहानी बताई है, मगर इसमें यही अर्थ निकलता है कि रावण तो इतना विद्वान था, क्योंकि वो ज्ञानी था, पंडित था, मगर इतना सब करते हुए भी छोटे से बात थी वो उसके समझ में क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भी ज्ञानी होते कारण तो समझ में आना चाहिए था ना। लेकिन उसका ड्रामा में पार्ट था, जैसा पार्ट था उसका का लंका का सर्व विनाश होने वाला है, तो उस पार्ट अनुसार उसने अपना वो पार्ट प्ले किया। तो इस प्रकार बाबा ही बोलते हैं कि हर एक आत्मा को अपन चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि जिसको जो भी ड्रामा में पार्ट मिला है वो पार्ट तो बजाएंगा ही, तो चेंज हमको होना है। तो इस प्रकार ड्रामा में हमें निश्चय रखना है। और पांचवा है यानी शुभ भावना शुभ कामना, यानी हर एक आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना शुभ कामना रखनी, वो क्या दोनों ने भी रखनी, बड़ों ने छोटे के प्रति और छोटों ने बड़ों के प्रति रखनी है, तभी दोनों का कल्याण हो सकता है। तो ये 5 पॉइंट हो गए। कौन से हो गए 5 पॉइंट? पहला स्वीकार करना है, पहले हमें स्वीकार करना है कि वो बड़े हैं हम छोटे हैं। दूसरा यानी रिगार्ड देना है, हमें एक दूसरे को रिगार्ड देना है। तीसरा सहन करना है, और चौथा ड्रामा पर निश्चय रखना है कि जो कुछ होता है ड्रामा एक्यूरेट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और लास्ट वाला शुभ भावना शुभ कामना, तो ये होगी बड़ों के प्रति, यानी छोटे के बड़ों को के साथ कैसा व्यवहार करे। तो ये 5 पॉइंट हमने निकाले। अभी बड़ों ने छोटों के प्रति कैसा व्यवहार करे, तो उसके लिए पहला पॉइंट एक क्षमा भाव, तो उसने क्षमा कर देना चाहिए। कभी कभी छोटे से गलती भी होगी तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। यदि क्षमा करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसके प्रति सम्मान बढ़ेगा। चलो भाई मेरे हाथ से इतनी गलती हो गई, लेकिन उन्होंने मेरी गलती को क्षमा कर दिया, तो आगे क्या करेंगे वो उमंग उत्साह से सेवा करेगा, या उसकी जो भी श्रीमत देते हैं उसका रिगार्ड करेगा। तो ये क्षमा भाव रखना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए उन्होंने। दूसरा है यानी स्नेह प्यार से उसकी पालना करनी। बाबा ने आज भी वो स्लोगन में क्या बताया, जैसे स्लोगन में बताया है ना कि भगवान के साथ स्नेह रखेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो बड़ों ने भी छोटों को क्या करना चाहिए, स्नेह प्यार से उसकी पालना करनी चाहिए। यदि स्नेह दे दे, यदि उसने बहुत उसको सेवा किया तो उसकी सेवा का श्रेय देना चाहिए, उसकी थोड़ी महिमा भी करनी चाहिए, इतनी आपने सेवा की, थोड़ा उसको सम्मान देना चाहिए। तो आगे भी क्या करेंगे वो सेवा के लिए, यानी अच्छी सेवा करेंगे, और उनके दिल में उनके प्रति अच्छी भावना होगी कि बड़े हमारा ख्याल रखते हैं, तो इसलिए स्नेह प्यार से पालना करना है। और तीसरा है यानी विशेषता अनुसार उसको आगे बढ़ाना है। कभी कभी क्या होता है, छोटे में बहुत कुछ विशेषता भी रहती है, यदि कोई सेवा क्षेत्र में कुछ प्रगति करना है, कोई चल रहा है, तो उसमें यदि उसने कोई राय दे दिया तो उसके राय का भी रिगार्ड करना चाहिए कि चलो भाई उसने दिया, नहीं तो ऐसा नहीं कि ये तो छोटा है, इनको क्या अनुभव है, हम तो इतने साल से डिपार्टमेंट चला रही है, तो ऐसा करके उसको राय को ठुकराना नहीं चाहिए। यदि उसकी राय अनुसार यदि हमने उपयोग में लाया सेवा में, और उस कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी राय ठीक ठाक रहती है और उसे सेवा में सफलता भी मिल सकती है, तो इसलिए उसके विशेषता अनुसार उसको विशेषता कार्य में लगानी है। कितने हो गए? तीन। और चौथा बताए आप कौन सा है? कौन सा हो सकता है? और यानी बड़ों ने, हाँ छोटों को प्यार, तो हाँ छोटों को प्यार तो दे दिया, स्नेह भी दे दिया, प्यार स्नेह दे दिया, और अपेक्षा, हाँ उसके प्रति एक्सपेक्टेशन कैसे कर गए आप? अपेक्षा है ना, स्वीकार, हाँ उसको स्वीकार करना चाहिए कि छोटा है तो वो भी अपने कार्य में हमें मदद कर सकता है, तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। हाँ स्वयं की चेकिंग करना है उनमें, हाँ और उसमें लास्ट बाइंड है, उसने स्वयं की चेकिंग भी करना है, बड़ों ने खुद की चेकिंग भी करनी। कभी कभी क्या होता है, बड़ों द्वारा यानी छोटे पर अन्याय भी होता है ना, और उसे समझ भी नहीं आता, वो गलती बार बार करता है और उसे समझ में नहीं आता कि हम छोटे पर गल यानी अन्याय कर रही है, और वो छोटा क्या करते, चलो उनके पास अधिकार रहता है, पद पोजिशन रहता है, उसी कारण वो उसको रिगार्ड देते हैं, मगर दिल से नहीं देता ना रिगार्ड, बार बार उसके सामने देगा मगर दिल से नहीं देगा। तो उसका ध्यान छोटू बड़े नहीं रखना चाहिए कि अपने स्वयं की स्वयं चेकिंग करें। जैसे द्वापर युग के राजा लोग थे, वो भी क्या करते थे कि अपने प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, कोई हमारे शासन के कारण किसके ऊपर अन्याय तो नहीं हो रहा, तो वो अपने ड्रेस चेंज करके दूसरे वेश में जाते थे बोलते, और प्रजा में और प्रजा का ध्यान रखते थे इस प्रकार। तो वैसे बड़े ने भी स्वयं की चेकिंग करना है और चेकिंग करके चेंज करना है। तो इस प्रकार बड़े और छोटे ने समझो एक दूसरे का मान सम्मान दिया, बड़ों ने छोटे को प्यार दिया, स्नेह दिया, और छोटों ने बड़े को सम्मान दिया, तो क्या हो जाएगा, हर एक क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करेंगे और उसमें स्वयं की उन्नति होगी और औरों को भी उन्नति होगी। ओम शांति।
सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं।
बाबा कितने निर्दयी।